ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीडिया महासम्मेलन के आज दूसरे दिन दोपहर सत्र में सबको दोपहर की नींद बहुत प्यारी लग रही है और उस बीच में आप सभी चुने हुए परमात्मा के रतन यहाँ आए हुए हैं। हम सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं समझती हूँ सब हमारे इस सत्र में धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और सत्र को शक्तिशाली बनाते जाएंगे। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। डायलॉग सेशन है आज के इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में, तो आज के मंचस्थ महानुभावों को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि मंच की शोभा बढ़ाने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित होंगे। ब्रह्मा कुमार कोमल भाई, एडिटर मधुबन न्यूज, डॉक्टर सोमनाथ भाई वडनेरे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव, ब्रदर कबीर जरीवाला पॉडकास्टर कबीरवाणी पॉडकास्ट मुंबई, डॉक्टर सुरेश भाई के वर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता बहन, शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच आबरोड से हमारे बीच हैं, ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग मुंबई, आपको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच की शोभा बढ़ाने। आज के महानुभाव हमारे मंच पर आसीन हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत परमात्मा की मदर स्मृति से किया जाता है और जहाँ परमात्मा का साथ शक्ति वरदान होता है वो कार्य शुभ हुआ ही है। तो आइए हम सभी उस परमात्मा पिता की मधुर स्मृति से आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। परमात्मा का आह्वान करें इस सभा में और परमात्मा की प्रेरणाओं को हम स्वीकार करेंगे। समय की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है और समय हमें दर्शाता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जीवन की यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं और उस पड़ाव में हम कुछ नया सीखते हैं। समय परिवर्तित है, हमको भी परिवर्तित करता रहता है और इस परिवर्तन के युग में मीडिया का क्षेत्र भी बहुत विशाल रहा हुआ है और इस परिवर्तित युग में जब मीडिया का कार्य भी परिवर्तित हुआ है तो वर्तमान समय हम देखते हैं कि AI टेक्नोलॉजी का जो युग शुरू हुआ है इसमें मीडिया भी अपनी बेखूबी कार्यवाही कर रहा है। तो आज ऐसे सुंदर विषय के साथ ही इस डायलॉग कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस डायलॉग कार्यक्रम का विषय है सोशल मीडिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, लाभ और खतरे, यूज ऑफ AI इन सोशल मीडिया, बेनिफिट्स एंड थ्रेट्स। हर चीज के दो पहलू होते हैं, लाभ भी है नुकसान भी है। तो आज के इस सेशन में हम इन विषय पर हमारे विद्वत जनों से सुनेंगे, अनुभव उनके साझा करेंगे। आज की मंच की शोभा बढ़ाने हमारे स्पीकर्स का हार्दिक स्वागत करने के लिए मैं बड़ौदा से पधारी हुई हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि पुष्पगुच्छ बैज और अंग वस्त्र से सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहने बड़ौदा से पधारी हुई। हमारे बीच ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी भी पहुंच चुके हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ब्रह्मा कुमार कोमल भाई आप भी पधारे हैं। मधुबन न्यूज चैनल के आप एडिटर पद पर अपना कार्य कर रहे हैं, आप दोनों का सादर स्वागत है। हम सभी करतल ध्वनि से हमारे मंचस्थ महानुभावों के स्वागत की श्रृंखला में जुड़ेंगे। तालियों से आज के इस वक्ताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि एक एक वक्ता अपने अपने क्षेत्र के विशेष दिग्गज हैं। काफी अनुभवी वक्ता आज हमें इस सत्र के जरिए मिले हैं, तो हम सभी खुश नसीब हैं और हम सभी बहुत भाग्यशाली आत्मा है कि ऐसे महानुभावों के अनुभव से आज हम इस विषय के बारे में सुनेंगे। भारत देश के अलग अलग स्थानों से पधारे हुए हमारे वक्ताओं का आज के इस दिन पर विशेष स्वागत है। बड़ी खुशी और हर्ष की बात है, आज 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है। मीडिया के साथ जुड़ा हुआ आज का ये दिन सुवर्ण अक्षरों में भी इतिहास लिखा हुआ है, बहुत सुंदर इस दिन का। तो आज मीडिया जो स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्र है, तो एआई के साथ तो और फ्रीडम मिली हुई है। और आज का विषय को लेकर हम सभी बहुत सुंदर इन सभी के अनुभवों को साझा करेंगे। हमारे बीच ब्रह्मा कुमार कोमल भाई हैं, आप सभी उनसे परिचित हुए हैं उद्घाटन सत्र में। कोमल भाई हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत बाल्यकाल से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय माउंट आबू मधुबन, जो ब्रह्मा कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, मधुबन न्यूज चैनल के आप एडिटर इन चीफ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद पर भी आप कार्यरत हैं। शिव आमंत्रण पत्रिका प्रकाशित होती है 2013 से, उसके भी आप संपादक पद पर कार्य कर रहे हैं। उसे पूर्व पंजाब केसरी, सहारा समय, न्यूज नेशन में भी आपने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। एनडीटीवी न्यूज चैनल, लाइव इंडिया न्यूज चैनल, समाचार प्लस चैनल में भी आपने बहुत सुंदर कवरेज संस्था का और राजस्थान का दिया हुआ है। आध्यात्मिकता और राज्यों के समन्वय से मीडिया को ऊंचाइयों तक ले जाने में आपकी बहुत अहम भूमिका रही है। आपका विशेष स्नेह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया से रहा हुआ है और मीडिया जगत की हस्तियों की सेवा करने का विशेष सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे विशेष प्रतिभा के धनी ब्रह्मा कुमार कोमल भाई को मैं आमंत्रित करती हूँ, आज के विषय को हमारे समक्ष खोलेंगे और हम सभी को एआई से सोशल मीडिया के जरिए क्या लाभ और क्या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में हम सभी को अपने विचारों से साझा करेंगे। ब्रह्मा कुमार कोमल भाई,
ओम शांति। अभी इस कार्यक्रम में तत्काल जो है सुधार करने की एक पहल हुई है, और ये हमारे मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर निकुंज भाई हैं, तो इन्होंने कहा है कि जितने आगे बैठे हैं उतने स्टेज पे बैठे हैं, तो बाकायदा बेटर है सुनने सुनाने से अच्छा कि उसमें हम लोग बातचीत कर लें या इसको एक टॉक शो की भूमिका में तब्दील कर लें। तो आपके और हम दोनों लोगों की बातचीत होगी तो मुझे लगता है कि सब लोग एक दूसरे को सुनेंगे भी, नहीं तो किसी को नींद आएगी, किसी को झुटका लगेगा, दो लोग और उठ के चले जाएंगे तो पता पड़ेगा कि मंच पर ज्यादा लोग हैं, बाहर लोग कम ही लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बातचीत का सिलसिला अगर रहेगा टॉक शो के तौर पे, तो अगर आप इसलिए सहमत है तो इसको अपने तब्दील कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की पैरवी भी हम लोग कर लें, केवल हम लोग बोले आप सुने ऐसा नहीं, हम नहीं चाहते कि आप लोग, क्योंकि आप लोग भी तो पत्रकार है ना, आप लोगों को भी तो समुद्र उछाल मार ही रहा होगा, तो उसमें बातचीत होगी तो मुझे लगता है कि लहरें एक दूसरे से टकराती रहेंगी तो ठीक रहेगा। तो अगर ऐसी सहमति हो तो फिर मैं मंच से सम्मान छोड़ता हूं और अपनी जगह जाके बैठता हूं और वहां से फिर बातचीत होगी।
ओम शांति। जो सभी साइड में बैठे हैं, आप सबसे नम्र अनुरोध है कृपया हम बीच में आ जाएंगे, सभी मध्य वाली सीट्स पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो अच्छा है। जो भी बहुत साइड में बैठे हैं, आप सभी बीच में, काफी जगह है, बीच में अपना स्थान लेंगे। पीछे भी बैठे हैं, सभी बीच में आ जाएंगे। जो हमारा डायलॉग सेशन है उसको हम टॉक शो में परिवर्तित कर रहे हैं, तो नजदीक रहेंगे तो एक दूसरे के विचारों को हम बहुत नजदीक से सुनेंगे और वाइब्रेशन को भी कैच करेंगे। मैं हमारे साउंड डिपार्टमेंट के भाइयों को विनंती करती हूँ कि हमारे मंचस्थ महानुभावों को माइक। ओम शांति। आज का युग एआई का युग कहो तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। हर क्षेत्र में एआई ने अपना स्थान ले लिया है और मीडिया तो एआई का भरपूर उपयोग कर रहा है। कुछ भी चाहिए तो हम तुरंत एआई का सहारा लेते हैं। एआई ऐसी उपलब्धि हमें मिली हुई है जिसके बहुत लाभ भी हैं और दूसरी साइड देखा जाए तो उसके नुकसान भी इतना ही है। अगर हम सावधानी पूर्वक एआई का उपयोग करें तो एआई हमें बहुत मदद रूप है। तो आज ऐसे सुंदर विषय के साथ आज के इस टॉक शो में हमारे बीच महानुभाव जो है, फिर से मैं सभी का परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे मध्य में है ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी, जो इस मीडिया प्रभाग के आप राष्ट्रीय समन्वयक हैं। आप मुंबई घाटकों पर सब जोन के डायरेक्टर पद पर भी अपना कार्य कर रहे हैं। साथ में कबीरवाणी पॉडकास्ट के पॉडकास्टर भ्राता कबीर जरीवाला जी मुंबई से हैं। मेरे बाजू में डॉक्टर सोमनाथ भाई वडनेरे, आप स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। साथ में ब्रह्मा कुमार कोमल भाई, मधुबन न्यूज के आप एडिटर हैं। डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी,
आपने बोल दिया है, आपने
हाँ,
बोल
मैंने
दिया,
बोल दिया।
हाँ।
फिर भी अभी सेशन और मधुबन हेडक्वार्टर के मीडिया विंग के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो पोस्ट आपकी और एडिशन हो गई, बहुत अच्छा। आज का जो विषय है उस विषय पर मैं सबसे पहले कोमल भाई से प्रश्न करती हूँ कि कोमल भाई, हमारा एआई का मीडिया से जो संबंध रहा है उसमें कितने हम लाभान्वित हुए ही हुए हैं, साथ में हम उसकी बैकसाइड भी देख रहे हैं, तो आपके विचार हम सभी के साथ साझा करें। ब्रह्मा कुमार कोमल भाई,
ओम शांति। मैं बोलूंगा नहीं बट बोलूंगा, तो मैं आपके साथ सहयोग करूंगा और सबको बोलने पे पाबंदी भी लगाएंगे और सबसे बुलवाएंगे भी, ठीक है। तो जो आज का सब्जेक्ट है, डायलॉग था लेकिन हम लोगों ने इसको टॉक शो में चेंज कर दिया है, और सब्जेक्ट है कि सोशल मीडिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। कृत्रिम मतलब बनावटी बुद्धि, बनावटी बुद्धि मतलब समझ रहे ना, कि आपकी शक्ल का आदमी बना के, और जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित थे तो भीम को वो मारना चाहते थे, तो बनावटी भीम उनके सामने प्रस्तुत किया गया, तो भीम तो बच गए, उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो बनावटी बुद्धि का उपयोग, लाभ और खतरा, इसमें लगभग सब लोग जानते हैं। देखिए कैसा है कि आप कितना भी बनावटी कर लीजिए, पहले के जमाने में लोग पहाड़ा पढ़ते थे, पहाड़ा सबको याद है ना, गिनती पहाड़ा, दो दुना चार, दो तियाई छः, दो चौके आठ, दो पच्चे दस, ऐसा। और अगर कभी किसी को कहा जाता था कि ये बताओ कि ये कितना कितना है, तो आदमी काउंट करके बता देता था। आजकल के बच्चों से पूछिए तो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो नकली बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो जब व्यक्ति नकली बुद्धि का उपयोग करेगा या बनावटी बुद्धि का उपयोग करेगा, तो असली बुद्धि की जो सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, या धीरे धीरे उसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है। तो जब आदमी एक लिमिट में हो जाता है, तब वह केवल एक मशीन की तरह से काम करता है और आदमी मशीन पे ही भरोसा करता है। अब मशीन के लाभ और खतरे, मान लीजिए कि कोई थ्रेसर चल रहा है और थ्रेसिंग आदमी कर रहा है और उसमें उसका हाथ पड़ गया, थ्रेसिंग काट देगा, उसको रोकेगा थोड़ी, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, एक ह्यूमनिटी नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो उपयोग हो रहा है, मुझे लगता कि जहां दया करना चाहिए वहां काट रहा है, जहां काटना चाहिए वहां दया कर रहा है, क्योंकि उसको फीड कर दिया गया कि तुमको इतना ही करना है, समझ रहे। तो ये जो बनावटी बुद्धि है, अगर हम जिस दिन बनावटी हो जाएंगे और जिस दिन बनावटी का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो इस देश में भारत के राम राज्य की परिकल्पना, अच्छे संस्कारों की परिकल्पना और अच्छे परिवार की संकल्पना, अच्छे पत्रकार की संकल्पना सब खत्म हो जाएगी, जो आज के युग में हो रहा है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। मतलब बिल्कुल मैं देहाती रूप में बता रहा हूँ, एकदम ग्रास रूट वाली बात पे, हम लोग बहुत हाई फाई बात नहीं करेंगे इस पे। अब ये है कि इसका लाभ और खतरा कितना है। मुझे लगता है कि आप भस्मासुर मत बनिए, ये एक तरीके से भस्मासुर है, आपको हथियार तो दे दिया, आपके दिमाग में फिट कर दिया गया कि इतना ही चलाना है, अगर अगल बगल का कोई सेंस पैदा करना है तो वो समझ में नहीं आएगा। चैट जीपीटी है या एआई आजकल आ गया है, आप उसको उपयोग कीजिए, लेकिन उसकी एक लिमिट है। हम लोग कभी गए थे दुबई, दुबई में एक रोबोट था वहां पे, तो हम लोग रोबोट के सामने गए तो सब लोग सवाल पूछ रहे थे, रोबोट बताया, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा कि जरा इससे पूछो कि तुमको हिंदी इंग्लिश सब आती है या कुछ थोड़ा, तो बोलती कि नहीं मुझे हिंदी पढ़ाया नहीं गया, मैं सिर्फ इंग्लिश ही बोलती हूँ और मेरी उम्र सिर्फ इतनी ही है, बाकी का मुझे पता नहीं है। तो ये बनावटी बुद्धिमत्ता है और बनावटी बुद्धिमत्ता कभी भी अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकती है, संवेदना पैदा नहीं कर सकती है, करुणा पैदा नहीं कर सकती है, ममत्व पैदा नहीं कर सकती, आपसी सद्भाव पैदा नहीं कर सकती है। हाँ, उसको सहेजने में, उसको ग्रो करने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितना लाभ उससे ज्यादा खतरे हैं। मैं इसमें अगर एक कदम आगे बढ़ूं तो हमारे साथ में निकुंज भाई हैं, ये हमारे प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं निकुंज भाई ये कह रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि अगर नकली और असली का भेद जब मिटने लगेगा तो इसके इस्तेमाल की बुद्धि कहां से आएगी, अगर हम एआई का जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। बहन जी, हम आप दोनों करेंगे, ठीक है
जी। नमस्कार, ओम शांति। देखिए, हमारा फर्स्ट टाइम हमने इस विषय को पिछले साल इसी मंच पे इंट्रोड्यूस किया था एआई के बारे में, उसमें एआई वर्सेस एसआई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये दोनों के भेद के ऊपर हमने चर्चा किया था। बट मैं शॉर्ट एंड स्वीट यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो बताया कि जिस चीज का नाम में ही पहला शब्द है आर्टिफिशियल, आज संसार में भी जब कोई त्यौहार आता है या जो भी ऐसी कोई बात होती है, जो हमारी बहनें माता है वो गहना लेने जाती है तो पूछती है, जो 24 कैरेट है ना, वो 999 सोना जो आता है, जब असलियत के लिए हम लोग इतने जिसको कहते हैं कि हमारी बुद्धि हमारा मन इतना चौकसी करता है कि नहीं मेरे को प्योर चाहिए, तो जिस चीज में आर्टिफिशियल लिखा हुआ है तो उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। अब जो प्रश्न इन्होंने किया है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पिछले संडे को छपा हुआ था, मैंने इनके हाथ में अभी थमाया कि भारत में कितने लोगों को पता ही नहीं एआई क्या है, उसका टाइटल ही मोस्ट इंडियंस मे नॉट नो अबाउट एआई बट दे कांट वेट टू फाइंड आउट, मतलब 60% को पता ही नहीं। यदि मैं यहां पूछूं आप में से किसी को जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, किसको पता है, बोलिए। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो है, बहुत सारे डेटा शीट्स का लेखा जोखा बना करके अनेक लैंग्वेजेस में पढ़ाया हुआ किसके अंदर वो भर दिया है। इन्होंने जो बोला ममत्व नहीं पैदा कर सकता है, भावना पैदा नहीं कर सकता, तो ऑल सेड एंड डन, जो हमारे फाउंडर पिताश्री जी ने एक शब्द कहा था, साधन विज्ञान के अनेक इससे भी अच्छे से अच्छे निकलेंगे परंतु आपकी साधना में बाधा रूप न बने। तो एआई इज गुड ऑल्सो बैड ऑल्सो, परंतु टाइम्स ऑफ इंडिया में और एक लेख छपा था, बड़े विद्वान यूनिवर्सिटी के टीचर है शुक्ला जी, आकाश शुक्ला, उन्होंने बताया कैसे एक बच्चे को स्कूल में कहा निबंध लिखो तुम, फटाक से उसने लिख दिया एक मिनट में। लास्ट में वो प्रोफेसर साहब बताते कि ये सोचने की क्षमता हमारी बिल्कुल खत्म कर देगा आगे चल करके, ये इसका खतरा है। पर एक मिनट में कोई चीज लिख दी, यदि आप कभी जल्दी में हो, कोई ऐसा काम आपका है फटाफट आपको करना है, तो एक पॉइंटर जिसको कहते हैं सहयोग ले सकते हो आप, परंतु उसी के ऊपर चलना, उसी के आधार पे अपनी जीवन जीना, कहां ना कहां ये एक खतरे की घंटी है, ऐसा हम समझते हैं। तो इसलिए असली और नकली में समझ आखिर भी बनाया मनुष्य नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि बनाया किसी इंसान नहीं है, तो जो रचता है वो रचना के अधीन हो जाए, ये थोड़ा सा सोच और समझ का विषय, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। सब इस्तेमाल करो, लोग हम सब हम छोड़ दे सब, भाई हम कहाँ कह रहे हैं, सब करो बट समझ के साथ, विथ केयर और संतुलन के साथ।
इन्होंने निकुंज भाई हम सबको एक इशारा दे रहे हैं कि विवेक बुद्धि का भी उपयोग करना है, केवल उसी बुद्धिमत्ता पर हमें आधारित नहीं रहना, अपनी विवेक शक्ति का भी प्रयोग करें। तो मैं सोमनाथ भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ, सोमनाथ भाई आप इस पर अपना विचार साझा करें। जैसे निकुंज भाई ने कहा कि शब्द की शुरुआत ही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नकली। हम अपने दैनिक जीवन में भी कोई भी चीज आर्टिफिशियल पसंद नहीं करते हैं। घी लेने जाएंगे तो भी हम खातरी करेंगे 100% शुद्ध है, सोना खरीदने जाते हैं तो भी हम शुद्धता को जांच करते हैं। हर चीज में शुद्धता का प्रयोग हम करना चाहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हम एआई का बहुत स्वाभाविक रूप से वेलकम करके उसका यूज कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन जैसे भाई जी ने भी अभी कहा, हमें अपनी विवेक शक्ति को बिल्कुल साइड में नहीं रखना चाहिए। तो सोमनाथ भाई आप इस पर हम सबको कुछ विचार दीजिए।
ओम शांति। हमारे आदरणीय विचार मंच ने जो बात रखी है उसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ विषय इस संदर्भ में नए रेफरेंस देना चाहता हूँ। सबसे मूल बात तो हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक से हम भटके नहीं, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सोशल मीडिया में जो प्रयोग हो रहा है उससे क्या लाभ होने वाले और क्या हानियां होने वाली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ हानियां नहीं है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सोशल मीडिया में जो प्रयोग हो रहा है वो ज्यादा चिंताजनक है। सबसे पहली बात तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जिस प्रकार से आदरणीय निकुंज भाई जी ने कहा कि जो बनाया है आर्टिफिशियल जो बातें हैं वो आखिर इंसान ने ही बनाई है, लेकिन इसका जो रचयिता है उन्होंने जो बनाया था उनका जो नाम है डॉक्टर जेफरी हिंटन, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया। उनका मकसद यही था कि लोगों के श्रम को कम किया जाए, लोगों के पैसे जो है, ताकत जो है उसको कम किया जाए और बहुत ही आसानी से मानव समाज को ये वरदान के रूप में स्थापित हो, ये उसकी सबसे पहली बात थी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो प्रयोग होने लगा उसके साथ साथ दो बातें ग्रो हुई, एक तो सोशल मीडिया भी रैपिडली ग्रो होने लगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी उसके अंदर रैपिडली ग्रो होने लगी। तो सबसे आपत्तिजनक बात यही है हमारे सामने कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया भी अपने आप में बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये दोनों अगर आपस में मिल गए हैं तो स्वाभाविक है कि लाभ और हानियों को हमको विचार करना होगा। तो कुछ बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग हो रहा है। तीन सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छी तरह से उपयोग हो रहा है, वो बातें मैं पहले बताने जा रहा हूं। सबसे पहले फेसबुक में सोशल फेसबुक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको मेटा अभी नाम आया है, उसमें सबसे ज्यादा एआई का यूज अभी होने लगा है। उसमें बहुत सारी बातें, लेकिन अभी ही निकुंज भाई ये खबर आई है कि फेसबुक ने एआई को स्टॉप कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसका वजह फेसबुक ने बताया, क्या बताया कि जो एआई के बॉट्स माना टेम्पररी, जो जिस प्रकार से कस्टमर केयर रहते हैं ना, वो कस्टमर केयर अपने हर कस्टमर के सवाल को जवाब देते हैं, जिसको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बोलते हैं FAQs, तो एआई के बॉट्स जो है वो व्यवस्थित रूप से लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मानवीय भाषा, मानवीय संवेदना का उसमें अभाव था। तो देखो भाई और बहनों कि जो सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक में भी जो प्रयोग हो रहा है एआई का, उसको थोड़ा स्टॉप कर दिया है। दूसरा प्लेटफॉर्म हमारा सबसे बड़ा व्हाट्सएप, उसमें भी एआई का यूज हो रहा है, उससे जो लाभ होने हो रहे हैं उसको मैं आपके सामने बताता हूं। एक तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सर्कल आ रहा है व्हाट्सएप में, ब्लू कलर का सर्कल आ रहा है। शुरू में तो लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, लेकिन एआई का वो वहां पे एक जिसको प्लगइन्स बोलते हैं, वो प्लगइन्स इनबिल्ट वहां पे डाला गया है। उसमें बहुत सारी बातें कि एआई जनरेटेड इमेजेस आप व्हाट्सएप में आप निकाल सकते हैं, ये लाभ है। हम लाभ और हानियां दोनों देख रहे हैं। लाभ यही बात है कि मेटा एआई विजेट जो है होम स्क्रीन पर हमको बातचीत करने में प्रवृत्त करता है। और लास्ट में इंस्टाग्राम भी सबसे रैपिडली ग्रो होने वाला प्लेटफॉर्म है। उसमें जो रेप्यूटेड मानदंड है वो मानदंड से अगर कोई ऐसी एबूस पोस्ट अगर किसी ने पोस्ट की तो एआई टूल्स ऑटोमेटिकली उसको हटा देता है। ये बहुत बड़ी बात है एआई की। अभी देखेंगे कि अभी एआई की जो कम टू द पॉइंट बोलेंगे, जिस प्रकार से बेंजी ने मुझे बात कही है कि एआई के जो लाभ है और हानियां है उस पर विचार किया जाए, तो सबसे बड़ी बात तो लाभ के बारे में देखें तो कंटेंट पर्सनलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे कि यूजर को जो है यूजर मतलब यूज करने वाला, सोशल मीडिया यूज करने वाला, वहां पे कंटेंट को पर्सनलाइजेशन किया जाता है एआई के जरिए। ये बहुत बड़ी बात है, लाभ है, ये बहुत बड़ा लाभ है। और मॉडरेशन होता है एआई के जरिए कि अभी तो बहुत सारी आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए गवर्नमेंट प्रवृत्त करती है कि नहीं आप ये हटा दो, लेकिन एआई के जरिए से ऑटोमेटिकली वहां पे ऐसे टूल्स विकसित किए गए हैं कि ऑटोमेटिकली आपत्तिजनक पोस्ट जो हटा दी गई है। और बहुत ग्राहक सेवा, जिस प्रकार से मैंने अभी जिक्र किया कस्टमर केयर का, और डेटा विश्लेषण बहुत सहज हो गया है। तो ये लाभ है सोशल मीडिया के। अब लास्ट में मैं हानियों के बारे में कहकर अपनी बात को पुनर्विराम देना चाहता हूं। सोशल मीडिया पहले ही बहुत बड़ा रैपिडली प्लेटफॉर्म है। सुबह मानसिक परमार जी ने कहा कि सोशल मीडिया भस्मासुर है, बहुत बड़ी बात है सही में, क्योंकि जिस प्रकार से उसका गलत उपयोग हो रहा है और उसमें भी अभी ए आ गया है तो हमारी चिंताएं बढ़ गई है। तो उसमें गलत सूचना और फेक डिफेक वीडियो, बहुत सारी बातें आपत्तिजनक कि हम सोच नहीं सकते कि इतनी वहां पे गलत सूचना और फेक वीडियो का जिक्र बहुत सारे सेलिब्रिटी ने किया है, चिंता भी व्यक्त की है। गोपनीयता का हनन, बहुत जो कॉन्फिडेंशियल बातें रहती है वो सोशल मीडिया में एआई के टूल्स उपयोग के कारण गोपनीयता का हनन करने की संभावना बढ़ गई है। पक्षपाती एल्गोरिदम, हम सबको पता है कि जो सोशल मीडिया है उसका खुद का एक भाषा रहती है। निकुंज भाई ने जिस टेक्निकल बात का जिक्र किया अल्गोरिथम का, तो ये जो पक्षपाती जो बातें हैं, एक बार की बात है कि फेसबुक को माफी मांगनी पड़ी कि हमने कमेंट्स और लाइक को मैनिपुलेट किया है। तो ये सब बातें हैं, ये अभी आगे चल के होने वाली है। और भावना मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये बहुत बड़ी बात है, आदरणीय मंच भी इस बात पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन लास्ट में मैं एक चिंताजनक बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो एआई के गॉडफादर है उन्होंने एक बात अफसोस किया कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने एआई का निर्माण किया है। जिस प्रकार से जो परमाणु बम है उसका जो जनक है उसने भी लास्ट में मरते समय यही चिंता व्यक्त की कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने परमाणु बम का इन्वेंशन निकाला। उसी प्रकार जो है हमारे डॉक्टर जेफरी इंटर्न एआई के जनक, उन्होंने भी कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसे टूल्स का निर्माण किया है जो अभी आगे चल के बहुत हानिकारक साबित हो। तो यही बात है, हम आगे चल के हमारे आदरणीय मंच से भी इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। थैंक यू, ओम शांति।
आभार सोमनाथ भाई। अभी हमारे साथ कबीर भाई है। कबीर भाई आप मुंबई से हैं और कबीर वाणी पॉडकास्ट, बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट सीरीज जिस पर अधिकतर मैंने जो देखा स्पिरिचुअलिटी और लाइफ स्टाइल के ऊपर आपने कई पॉडकास्ट अभी तक किए हुए हैं। तो कबीर भाई आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का वाइड प्लेटफॉर्म आज सबके हाथों में है और उसमें जब एआई मिक्स होता है तो एआई के यूज के साथ किस प्रकार हम समाज की सेवा कर सके और समाज को हानि भी न हो, क्या हम अपनी कैसी लिमिट से उसको यूज करें?
ओम शांति। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच ब्रह्मा बाबा का, निकुंज जी का, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आने के लिए। मैं सारे लोगों से अग्री करता हूँ कि जो एआई आया है वो एक बहुत पावरफुल चीज है। हम जो वक्त में रह रहे हैं उसमें कंसिस्टेंटली लाइफ तो चेंज हो ही रही है, बट अब एरा भी चेंज हो रहा है। एआई हमें पावर देता है डेफिनेटली, बट जो हमारा सोच है, हमारी जो माइंडसेट है, उससे हमें सही राह मिलती है। और अगर हम अंदर से अलाइन नहीं रहेंगे तो बाहर इंटेलिजेंस होने का कोई फायदा ही नहीं है। और एआई अमेजिंग है, मुझे एआई बहुत पसंद है, मैं हर रोज एआई का उपयोग करता हूं। हमारे लिए कंटेंट इजीली बना देता है, हमारे वीडियोस एडिट कर देता है, यू नो सर ने कहा जैसे इमेजेस जनरेट हो जाते हैं, हमारी आवाज मिमिक कर लेता है। आज एआई एक यू नो एस्ट्रोलॉजर है, आज एआई एक कंटेंट क्रिएटर है, आज एआई हर एक वो चीज है जो एक इंसान बनना चाहता है। बट अगर हम सोचे इसे, इस बात को हम सही से देखे, तो निकुंज जी ने जैसे कहा कि एआई के पास वो सारी कोई भी चीजें नहीं है जो हमारे पास है. हम उनके पास सोल नहीं है, वैल्यूज नहीं है और इंटेंशंस नहीं है. और यहां पर हम एंटर करते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज वही देगा जो क्लैरिटी से आप उसे बताओगे. तो जो इंस्ट्रक्शंस आप उसे दोगे वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको वो कंटेंट बना के देगा. सो अगर आपने उसे कंफ्यूजन दिया तो इन रिटर्न आपको वो कंफ्यूजन देगा. अगर आपने उसे क्लैरिटी दी तो इन रिटर्न आपको वो सबसे बढ़िया कंटेंट बना के देगा. तो आपको ये सोचना है कि रियल एम्पावरमेंट है किधर. बाहर नहीं है, रियल एम्पावरमेंट है जो हमारे अंदर से बाहर आता है. और आप सब शायद जानते होंगे एक कहावत है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर चीज अब हम इस तरीके से जा रहे, एआई तो बंद होने से रहा, वो पॉसिबल ही नहीं है. क्या हम उसे करेक्टली यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. कैसे? वो हमें हमारा माइंडसेट सिखा सकता है. तो मेरे लिए मैं ये चार चीजों का उपयोग करता हूं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा. सबसे पहला होता है क्लियर इंटेंशंस. ओके, हमारा इंटेंशंस क्या है? सो पहले जब आप वो आपका पोस्ट शेयर करोगे, जब भी आप वो पहली लाइन लिखने जाओगे, जब आप सोचोगे कि अच्छा अभी मुझे वो एआई को इंस्ट्रक्शंस देना है कि मुझे वो कंटेंट बना दे, तो आपको पहले ये सोचना है कि ये मैं कर क्यों रहा हूं, ये कौन सी एनर्जी मैं आके डालने वाला हूं उस तरीके का जो कंटेंट आपको फिर वो एआई निकाल के देगा. बट अगर आपका माइंडसेट और अगर आपकी सोच डर में है, स्ट्रेस्ड आउट है या बिखरी हुई है, तो वो कंटेंट आपको वैसे ही निकाल के देगा जिसमें आप डरोगे और आपका कंटेंट भी लोगों को डराएगा. बट लेकिन अगर माइंडसेट आपका फोकस्ड है और अगर आपको पता है कि भाई ओके ये चीज मैं इसलिए करना चाह रहा हूं जिससे मेरी एनर्जीज अच्छी बाहर जाएंगी, तो वो कंटेंट आपको इस तरीके के बना के देगा जिससे लोगों को डर नहीं लगेगा, उनका कॉन्शियसनेस एम्पावर होगा, उनका कॉन्शियसनेस चेंज होगा, क्योंकि वो चीज हम एज मीडिया पर्सनल होल्ड करते हैं. दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन. द सेकेंड वन इज मेडिटेशन. जो चीज हम भूल जाते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं ना कि अरे हमें तो बहुत बढ़िया सा कंटेंट है, तो पूरा दिन रात हम रेडबुल पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जाग रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि कंटेंट अच्छा वहां से निकलेगा. बट अगर आपने मेडिटेशन करना सीख लिया तो सबसे अच्छा जो आपको कॉन्टेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा मेडिटेशन के द्वारा. आपको अभी खाली ये सोचना है कि सिर्फ पांच मिनट दिन के आपको निकालने हैं मेडिटेशन करने के लिए. और वो मेडिटेशन जैसे ही आप करना चालू करोगे, वो आपको ऐसी आइडियाज देगा जिससे एक पॉसिबल कंटेंट जो आप चाहते हो ना, जो दुनिया को दिखाना चाहते हो, जो दुनिया को डराए ना, जो दुनिया को अच्छी चीज दिखाए, वो आपको मेडिटेशन के द्वारा दिखाया जाएगा. हम कंसिस्टेंटली सोचते हैं मेडिटेशन करना मतलब क्या, हम ध्यान में बैठ गए, सांसों पे ध्यान दिया, ये चीज मेडिटेशन नहीं है. मेडिटेशन है कि आपके थॉट्स आ रहे, उसे आने दो, उसको लेट, वो बोलते ना हम पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ, नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, वो मेडिटेशन आपके लिए नहीं है. आप शांति से थोड़ी देर बैठो, थॉट्स को आने दो, उसको रोकने की कोशिश ना करो, और वो चीज आपको इतना पावरफुल कॉन्टेंट निकाल के देगा. आप एक बार मेरा पॉडकास्ट देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा. नंबर थ्री इज गोइंग टू बी एक्शंस. चलो हमने इंटेंशंस कर लिया, हमने मेडिटेशन कर लिया, सही है, हमने कंटेंट लिख लिया, पर हम छोटे छोटे वो नहीं करते, एक्शंस नहीं लेते हैं. अभी इसमें क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक अच्छा सा कंटेंट निकालना है, सो हम मैनिफेस्ट करते हैं. आई एम श्योर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, मेरी हिंदी बहुत शुद्ध नहीं है, बट मैनिफेस्टेशन हमें पता है ना क्या है, वी गुड नो, या ओके मैनिफेस्टेशन. ओके सो मैनिफेस्टेशन क्या है, हम जो चाहते हैं, जो हमारा इंटेंशन क्लियर है, हम जो पाना चाहते हैं. तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई मैनिफेस्टेशन है, हम ऐसे बैठेंगे, हाँ मुझे 1,00,000 फॉलोअर्स चाहिए, मुझे इतने व्यूअर्स चाहिए, मुझे निकुंज सर के बाजू में बैठ के स्पीच देना है, ये सब मैनिफेस्टेशन नहीं होता है. मैनिफेस्टेशन ये होता है कि हर रोज आपके जो इंटेंशंस है वो छोटे एक्शंस के साथ आप ले रहे हो, वो होता है मैनिफेस्टेशन. और जो क्लियर माइंडसेट होता है, वो अगर आपका शांत हो गया, तो माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन अगर आपने कंबाइन कर लिया, तो आपके लिए द बेस्ट थिंग दैट इट विल डू फॉर यू इज दैट के इट विल गिव यू क्लैरिटी, इट विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग, एंड इट विल गिव यू कामनेस टू राइट द कॉन्टेंट यू वॉन्ट एंड यूज द एआई द वे यू आर सपोज टू यूज इट. अच्छा, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन हो गया, मेडिटेशन हो गया और एक्शन हो गया. फोर्थ हो जाता है, अभी हम यहां आए हैं हमने अच्छे अच्छे स्पीचेस सुने हैं, बहुत सारे लोग ने लिखा है जो हम बोल रहे हैं। अब ये चार दिन का जोश रहेगा, और सोडा बॉटल बोलता है ना, खोलता है तो जोश आता है, फिर वो जोश बैठ जाता है। चार दिन हम जाके ये प्रैक्टिस करेंगे, पांचवें दिन हम भूल जाएंगे। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कंसिस्टेंटली ये फॉलो कर रहे हो, क्लियर इंटेंशन सेट कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, और ये हर रोज आप कर रहे हो। और अगर आपने ये चीज मास्टर कर ली, नो वन कैन बीट यू आउट ऑफ दिस। आपको एम्पावरमेंट मिलेगा, आपको पीस मिलेगा, आपका कंटेंट भी बेस्ट मिलेगा, और एआई जो है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बनके आगे चलेगा। और फाइनली अगर मुझे कोई पूछे कि भाई एआई का रियली महत्व क्या है ये आज के जमाने के अंदर, तो आपको कोई और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको कोई नया एआई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ तीन से चार चीजें करने की जरूरत है जो इनर स्टेबिलिटी हम बोलते हैं। क्योंकि आज हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पर आउटसाइड बहुत सारी रफ्तार से स्पीच चल रही है, कंटेंट आया फौरन हाथ डालना है, कहां पर अटैक हुआ आज हमें डालना है, यहां पर ये क्रिकेट मैच जीत गए आज हमें डालना है, 13 साल का बच्चा 100 रन बना रहा है, 1.5 करोड़ रुपए में बिक रहा है वो हमें डालना है। पर हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्या आगे पोर्ट्रे करना है, वो कंटेंट, वो तो टॉपिक मिला आपको, वो टॉपिक के साथ आप आगे क्या बोलोगे। तो इसके लिए आपको करेक्ट माइंडसेट चाहिए। अगर आपने करेक्ट माइंडसेट के साथ उसे इंस्ट्रक्शंस दिया एआई को कि भाई मुझे ये चाहिए, तो आपका कंटेंट बेस्ट निकल के आएगा। दिस इज वर्थ समथिंग आई हैव अंडरस्टूड। एंड फाइनली जो एनर्जीज हमारी होती है, अगर आपने वो एनर्जीज अलाइन कर दी, तो वो एनर्जीज आपके लिए बोलेगी कि आप कौन हो और आप क्या काम करते हो, और आपको कोई और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे एक जन ने आज पूछा कि क्या एआई हमें रिप्लेस करेगा, सो एब्सोल्युटली नॉट। यहां पर किसी की भी जॉब खतरे में नहीं है एआई से, लेकिन ये जॉब आपकी वो इंसान से खतरे में है जो एआई को माइंडसेट, अलाइनमेंट और क्लैरिटी के साथ यूज करेगा। वो इंसान से आपको जरूर डर के रहना है, बिकॉज वो इंसान आपकी जॉब ले सकता है, बिकॉज वो एआई भी यूज करना चाहता है और आपके काम को भी जानता है। सो मेरे हिसाब से ये चार चीजें अगर आप फॉलो करोगे, क्लैरिटी, मेडिटेशन, एक्शन एंड फाइनली कंसिस्टेंसी, ये चार चीज यूज करो सही माइंडसेट के साथ, एआई को यूज करो, तो एआई आपका दोस्त है दुश्मन नहीं, और एआई आगे ही जाना है पीछे नहीं। सो लेट्स हैव दैट अप फॉर इट।
मैंने कहा कि इन लोगों ने बड़े बारीकी से अपनी बात रखी है, और अभी आप भी बोल रहे थे कि मेडिटेशन करिए। आप लोग समझते हैं कि जब हम चिट्ठी लिखते हैं हाथ से, तो जब चिट्ठी लिखने वाला जब सात समंदर पार से चिट्ठी भेजता है, तो जब माँ बाप या जिसको भेजते हैं, जब आदमी पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। अगर वह प्रेम में लिखा गया है तो गदगद हो जाता है, अगर वह गुस्से में लिखा है तो आदमी एंग्री हो जाता है। क्या एआई ऐसी भावना जनरेट कर सकता है क्या? पहली दफे मैं बता रहा हूं, अगर नहीं जनरेट कर पा रहा है तो क्या हमें एआई का इस्तेमाल किस हद तक करना चाहिए? क्या अगर आज की जनरेशन है जो बच्चे हैं, पहले के जमाने में हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ते थे, हमें मोबाइल का और इस तरह का कोई ज्ञान ही नहीं था। आजकल के बच्चे माँ बाप से और हम सबसे ज्यादा एडवांस हैं, और उस एडवांस का नतीजा है कि ऐसे ऐसे चीजें सामने आ रही हैं जिसका वर्णन कर पाना इस स्टेज से भी बड़ा बुरा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, वर्मा जी आप बैठे हैं यहां पे, अभी एआई के बारे में काफी समझ रखते हैं, इस तरह के दुरुपयोग की पद्धतियों को रोकने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए लाभ तो लगभग सबको पता है कि आजकल तो इतने खतरे हो गए हैं कि आपकी आवाज में नकली आवाज बना के बोल देगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, तब तक आपको समझने में देर हो जाएगी कि मेरी आवाज कहां से आ गई। जिसको एआई का पता नहीं है, कोई सोचेगा कि हमारा तो कहीं छिप के किसी ने स्टिंग कर लिया। तो ये जो बड़ा खतरा है एआई, देखिए अगर हम एआई का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो हमारी बुद्धिमत्ता का विकास होगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि की चर्निंग करेंगे, और जब चर्निंग करेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर आपको निकल के आएगा। और आप, हम लोग जब ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करने के बाद मैं खुद बताता हूं कि जब मुझे कुछ लिखना होता है तो जब आदमी वॉक करता है तो उसके बाद इतने सारे कंटेंट क्रिएट होते हैं और भावनाओं के साथ क्रिएट होते हैं जो एआई नहीं कर सकता है। तो आपने कहा कि एआई का इस्तेमाल कीजिए, जैसे आप, हमने ब्रह्म कुमारी में आपने देखिए, बनारस एक शहर है, बनारस बहुत अच्छी शहर है, मैं बनारस का रहने वाला हूं,
वहां के गंगा के घाट पे चले जाइए, वहां कोई एआई काम नहीं करता है, लेकिन सृष्टि चक्र में वहां की खुशबू पूरे दुनिया भर के लोगों को खींच के ले आती है और खुशी का माहौल पैदा करती है। एआई ऐसा नहीं कर सकता है। वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर एआई से इतने खतरे हैं तो क्या उसका इस्तेमाल किया जाए या नहीं, और अगर किया जाए तो उसके दुरुपयोग रोकने का तरीका क्या हो सकता है?
ओम शांति। सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज संस्थान का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत अच्छा विषय यहां पर आपने जो है प्रतिपादित किया है। और
वर्मा जी, मैं आपको एक मिनट रोक दूं
जी।
मैं इसलिए रोक रहा हूं कि आपके बारे में बताने के लिए रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। ये डॉक्टर एस के वर्मा जी हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, और लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रोफेसर भी रहे हैं, रेडियो भी पढ़ाते रहे हैं, टीवी में भी पढ़ाते रहे हैं, और ये बाबा के बच्चे हैं और इनकी दो बहनें ब्रह्मा कुमारी केंद्र चलाती हैं। तो आपका बहुत बता।
जहां तक आज का विषय है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मीडिया और कम्युनिकेशन जो है इन दोनों के बीच का बहुत बारीक रास्ता है, रिश्ता है। तो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन आपने कहां से शुरू किया, पहला कम्युनिकेशन कौन सा किया? इस जीवन में आए तो पहला कम्युनिकेशन कौन सा किया? लिसनिंग। दूसरा स्पीकिंग। थर्ड रीडिंग। और चौथा राइटिंग। अब ये चारों ही हमारी नॉलेज के इनपुट्स होते हैं, सोपान है, और इन सब में कहीं ना कहीं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मराठी हैं, मुझे मराठी नहीं आती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उस भाषा अनुवाद को देख सकते हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं दूसरा उसे आसानी से समझ सकता है। आपने देखा फिल्मों का भी इस प्रकार से पूरा भाषा रूपांतरण जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत आसानी से किया जा सकता है। जहां तक राइटिंग की बात है, केवल 100 शब्दों में अगर रिपोर्ट बनानी है आज की, तो कोमल जी जो है बहुत आसानी से, बहुत विस्तार से नहीं, सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको इवेंट्स को बतला देंगे, तो केवल 100 वर्ड्स के अंदर ही पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये कार्य वैसे करने में हमें बहुत समय लगता था। तो चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, इन सभी इनपुट्स में जो हमारी अंदरूनी जो सा है, जो द्वार थे जिसके माध्यम से हमने लर्निंग की, उन सब में एआई बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। कल इस मंच पर जो बात हो रही थी वो हो रही थी सेल्फ इवेल्युएशन की, आंसरेबल की, और एथिक्स और वैल्यूज की। यानी मैं इसे 3 A's ऑफ मीडिया कहता हूं, असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी और अप्रेजल्स। देखिए, जहां तक असेसमेंट की बात है, यहां पर भी किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी कंटेंट को बहुत आसानी से असेस किया जा सकता है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। कितनी बार शब्द बोले गए हैं, अगर मान लीजिए पूरा वीडियो है उसमें कितने शब्द कौन कौन से आए हैं, बहुत आसानी से हम असेस कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वालिटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार की तमाम चीजें जो है, बड़ी बड़ी जो हमारे जैसे ब्रह्मा कुमारी की मुरली आती है, तो उसमें से मैं देख रहा था ऊपर स्पार्क विंग ने जो है बहुत सारे कंटेंट्स निकाले हुए हैं। तो इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा यूज हो सकता है, जो शायद उन्होंने बहुत पहले मैन्युअली कर रखा है, तो वो मैन्युअली अब नहीं बल्कि बहुत आसानी से हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो चीजें निकाल सकते हैं। दूसरा, जहां तक अकाउंटेबिलिटी है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी यूज करते हैं तो एक लाइन लिखी हुई मिलती है कि इसे 100% मत समझिए, सही होगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो इसलिए कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे मत रहिए कि जो उसने बताया है वो सच बताया है, आपको उसे डबल चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत भारी गलती भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसी के भरोसे पर मत रहिए। तीसरा अप्रेजल्स है, यहां बात आती है जिसकी तरफ कोमल जी ने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा कि हम किस प्रकार से जो सा है इस पर सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चुनौतियां हैं वो किस प्रकार से हम उसका सामना कर पाएंगे। तो ये अप्रेजल का जो है तीसरा विषय है। जहां तक 3 P's है सोशल मीडिया के, उन सब में हम यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारा कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बहुत कुछ प्रमोट करते हैं, हम बहुत कुछ प्रेफर करते हैं, यानी लाइक्स जो करते हैं। अब यहां पर आप देखिए, आपने आखिरी बार अगर किसी से किसी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग की है तो जैसे ही आप उस अकाउंट को खोलेंगे वो आपकी पिछली शॉपिंग को दिखाना शुरू कर देगा। बहुत अच्छा यूज मैं कहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमेज़न ने किया है। आप याद कीजिए, जो आपने पिछली बार खरीदा था वो बार बार आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि इसे दोबारा से खरीद लीजिए। बहुत अच्छा यूज जो है वो फेसबुक ने किया है। आप अगर उस पर डालते हैं पोस्ट कि मैं माउंट आबू जा रहा हूं तो कुछ ही समय में आपके पास बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स इस तरीके के आने लगे कि माउंट आबू में रहने का स्थान कौन सा अच्छा है, या और इस तरीके की जो बिजनेस की चीजें हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फेसबुक के माध्यम से आपको बताने लग जाता है। तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से प्रयोग कर रहे हैं। एक और बात इसमें करूंगा कि हमारी कल की जो यहां चर्चा हुई थी उसमें हुआ था कि थ्री पर्पज होते हैं हमारे मीडिया के, इन्फॉर्म करना, आपको एजुकेट करना और आपका एंटरटेनमेंट करना। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम का हमारे मीडिया का पर्पस होता है वो है एम्पावर करना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम यूज करते हैं तो अगर आपको इसकी टेक्निक्स पता हैं तो आप बहुत आसानी से कहेंगे जो काम घंटे भर का है वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो सकता है, जो एक दिन का पहले काम करते थे वो आप कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। तो इसने बहुत हद तक एम्पावर किया है। कोई दूसरी भाषा की रिपोर्ट है आप कहेंगे कोई बात नहीं, उसको फट से ट्रांसलेट कर लेते हैं और ट्रांसलेट करके उसको फिर दोबारा से उसी भाषा में अनुवाद कर देते हैं। तो ये सब एम्पावरमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जो इस प्रकार की दी है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। और पांचवा जो मुझे लगता है मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है वो है टू ट्रांसफॉर्म, चेंज लाना। तो यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे बीच में किस प्रकार का चेंज लाया है मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण से बताऊंगा कि फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी अगर हम छोड़ भी दें, अगर हम बात करते हैं टेलीफोन की, तो टेलीफोन को 2 करोड़ के अपने उपभोक्ता तैयार करने में 75 साल लगे, रेडियो को 2 करोड़ के अपने उपभोक्ता तैयार करने के लिए 38 ईयर्स लगे, टेलीविजन को अपने 2 करोड़ उपभोक्ता तैयार करने के लिए केवल 24 साल लगे। और आपने देखा कि 2 करोड़ का लक्ष्य फेसबुक ने सिर्फ 2 ही साल में प्राप्त कर लिया, टिकटॉक ने सिर्फ 2 ही महीने में प्राप्त कर लिया, और GPT जो है वो, मैं उसके स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि केवल 1 ही महीने में उसने 1 करोड़ का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया था। तो किस वास्ट तरीके से ये बढ़ रहा है, कितना विस्तृत है और कितनी डेप्थ वाली चीज है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है और इसका प्रयोग जो सा है हम उससे वंचित भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये उस तरीके की चीज है जिसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो अपनी योग्यता को, अपने हुनर को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। हम क्या क्या यूज करते हैं मीडिया में? नंबर वन, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसमें आप जो शब्दों का चुनाव करते हैं जीपीटी आपको बहुत अच्छे से देता है। सेकंड, हम ऑडियो का यूज करते हैं तो ऑडियो एडिटिंग इसने बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत तेजी से हमारे सामने बना दी है। जो हम मैंने बीबीसी और मार्क टली वगैरह जैसे के साथ जब काम किया है तो हम टेप को काटते थे, स्पूल यूज करते थे ऑडियो एडिटिंग के लिए। उसमें मान लीजिए कोमल भाई जी की एक हल्की सी खांसी आ गई है तो उतना टेप जो है स्लाइस करके फिर उसको ग्लू कर दिया जाता था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके सामने कितना, कितने सेकंड लगते हैं, उसको बहुत आसानी से आप जो है खांसी को या बैकग्राउंड को कुछ भी एलिमिनेट कर लेते हैं। सिमिलरली वीडियो कंटेंट को क्रिएट करने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय यूज कर रहे हैं, मैंने डूडल का यूज किया है, तो ये बहुत ही सशक्त है, बहुत तेजी से जो सा है ये लोकप्रिय भी हो रहा है। तो इस प्रकार की वीडियो कंटेंट्स को हम बहुत तेजी से इंक्लूड कर सकते हैं। और जहां तक पूरा का पूरा मीडिया है, मीडिया की आने वाले समय में देखना एक नई शक्ल आ जाएगी, क्योंकि आ ही गई है, क्योंकि आपके मोबाइल में ही सब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समाती जा रही है। तो अब हमारे मोबाइल के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। हम पहले लैपटॉप में यूज करते थे तो जीपीटी खोलना पड़ता था, नाउ इट इज इनबिल्ट। तो ये एक चेंज जो है वो पूरा का पूरा सिनेरियो बहुत जल्दी बदलने वाला है। उसके लिए जरूरी है केवल हम अपने आप को स्थिर रखें, और स्थिर होकर हम जो स्टेप लेते हैं तो वो अधिक सशक्तिकरण की तरफ हमें ले जा सकते हैं। और जिस प्रकार की बात यहां पर मेडिटेशन की है तो मेडिटेशन जो है वो यही सशक्तिकरण देता है। तो जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से और अधिक सशक्त हो सकती है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ओम शांति।
मैंने कहा कि वो जो दूर दराज के इलाके में बैठे हैं वैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है, आप वहां से सरहद से और आगे आ जाइए, वो पीछे एकदम भाई बैठे हैं वहां, आप लोग आगे आ जाइए ना इधर, हम लोग को चेहरा ही नहीं दिख रहा आपका तो पता नहीं।
सभी नजदीक आ जाएंगे।
मैंने कहा कि अगर जैसे वर्मा जी ने एआई के बारे में बात की है, मैं कहता हूं कि अगर एआई इंसान बनाया जाए तो कैसा रहेगा? कितने लोग हाथ खड़े करें, कितने लोगों को एआई इंसान चाहिए? अच्छा, मैं कहता हूं कि इसमें अगर सभा में जो लोग बैठे हैं, एआई से सबसे ज्यादा खतरा किसको महसूस होता है? आपको? अरे बताए, माता जी को महसूस हो रहा, आ जाइए, क्या खतरा है भैया आपको? अच्छा, कोई आपके हस्बैंड के नाम से कोई मीडिया को? अच्छा, मीडिया को खतरा, तो क्या खतरा बताएंगे आप? आ जाइए। अरे आपको माइक दे देते हैं, हाथ से सवाल जवाब होगा ना, और किसको खतरा है इसमें? हाँ, नरसन जी बताएं कि खतरा क्या है, तो वकालत के दृष्टि से भी बताइएगा, क्योंकि दोनों जगह इस्तेमाल हो रहा है आजकल।
मेरे पास बहुत सारे केस इस तरह के आते हैं, आए दिन आते हैं, साइबर जो क्राइम हो रहे हैं और साइबर ठगी जो है वो साइबर अरेस्टिंग तक कर लेते हैं। और वो क्या है कि आपके प्रिजन, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी पत्नी, और वो फोन आएगा कि साहब आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, आपके लड़के को गिरफ्तार कर लिया है फला अपराध में। तो ये जो है फेक एक पूरे से आपने क्रिएट किया और वो डर जाता है परिवार पूरी तरह से। तो एक तरह से समाज में भय पैदा करने का भी एक साधन बन गया है ये, और ये बहुत खतरनाक चीज जा सकता है। कुछ लोग इसमें सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को बताया कि आपके बेटे ने ये फला क्राइम किया है तो वो आदमी समाज में उसकी पिक्चर बनने लगती है और वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि कई बार सुसाइड तक की घटनाएं सामने आई हैं, और कई कई लाख तक के फ्रॉड इसमें सामने आते हैं। और अब तो जगह जगह पुलिस ने भी साइबर जेल बन गई है,
डीप फेक वीडियो,
हाँ हाँ, और साइबर क्राइम की पुलिस में भी एक डिपार्टमेंट बन गया है, लेकिन तब भी उसको खोजना, और पलक झपकते ही पूरा अकाउंट आपका साफ हो जाता है। आपने, और दूसरी बात क्या है कि आप देखिए ओटीटी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज भी कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन उनमें भी इसका जो उपयोग है, मैं कहता हूं एक मर्यादा जरूरी है, एक सीमाएं जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि बनावटी, बनावटी तो बनावटी होगा ना, आप वो कुछ भी ले लो, आप फूल की जो खुशबू है, इस जो फूल से खुशबू नहीं आएगी, फूल से खुशबू उसी से आएगी जो पेड़ पर लगेगा। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है और हमारी संस्कृति का हरण कर रहा है ये, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए।
बहुत बहुत अच्छा है, मतलब समाज को सजीव को निर्जीव बना रहा है, यही कहना चाहते हैं ना आप। अब ये बताइए कि इसमें और सुनीता बहन जी के पास हम लोग आएंगे, बैठ के अभी इंतजार कर रहे हैं, आपको योग कराएंगी। मैं कहता हूं कि इसमें ये बताइए कि और किसी को कोई सवाल है क्या एआई से संबंधित, आ जाइए। आ जाइए।
हेलो जी, दिल्ली से आया हूँ जी। जी किसी भी, जब हम नई तकनीक की बात करते हैं, नवीकरण की बात करते हैं, तो उसके दो कार्य होते हैं, वो प्रकट कार्य है और अप्रकट कार्य है। हमेशा जब हम पहले बैलगाड़ी में चलते थे तो हमारे पास दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम होती थी, लेकिन आज के टाइम में हम फ्लाइट से चलते हैं। तकनीकी तो हमें चाहिए, लेकिन फ्लाइट से हमारे पास एक सेकंड भी बचने का कोई चांस नहीं, अगर जरा सा कुछ हो जाए तो बचने का चांस नहीं। हम में से कई भाई अभी भी बात कर रहे हैं कि इसको बंद करना चाहिए। कोमल भाई कह रहे थे कि हम सात समुंदर पार चिट्ठी भेजते हैं तो उसमें भावना का होता है। मैं कहता हूं कि आज के टाइम में अगर मेरे भाई की, मेरे पिताजी की कोई एक्सपायर हो जाए तो सात समुंदर के पार में 10 दिन इंतजार करेंगे कि चिट्ठी पहुंचे वहां पे। विद इन 1 सेकंड चिट्ठी जा सकती है वहां पे आज के टाइम में। नंबर दूसरी बात, कबीर साहब ने एक बात कही है, देखिए प्रकट और अप्रकट वाली बात की थी कि कंट्रोल जरूरी है मानवता का। दूसरी सबसे बड़ी बात कही, अभी किसी ने कही है बात कि इसमें सबसे ज्यादा खतरा किसको है, तो मैं समझता हूं कि एआई का सबसे ज्यादा अगर खतरा होगा तो वो आध्यात्मिकता के ऊपर ही होगा खतरा, वो क्योंकि वो तकनीक उच्च कोटि की है बहुत, ये क्योंकि उसमें भावना ममत्व सब खत्म हो जाएगा और आध्यात्मिकता का पुट खत्म तकनीक पे आ जाएगा सब कुछ सारा। नंबर चिट्ठी की बात होगी, नंबर एक बात कही थी कि इसके नुकसान बहुत है, हानि बहुत है, आज के टाइम में इसको बंद कर देना चाहिए, बात आई थी। तो मैं कहता हूं कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें से एक भी अगर अपराधी बनता है तो समाज के लिए हानिकारक होता है, तो इसका मतलब क्या बच्चे पैदा बंद होने चाहिए? ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य, कहने का अभिप्राय, कहने का प्रयोजन यह है कि एआई को हम माइंडसेट के आधार पर नियंत्रित रूप से एआई बनी रहनी चाहिए, होनी चाहिए और जरूरी है। धन्यवाद।
क्या नाम बताया था आपने, क्या नाम बताया था आपने?
अजीज अहमद आजाद दिल्ली से।
अरे नाम क्या जा?
अजीज अहमद आजाद दिल्ली से।
अजीज अहमद साहब आपने तो लाजवाब बैटिंग की बैठी है। मैं ये कह रहा था जरा समझिए हमारी भावना को, समझिए आप यही एआई का इस्तेमाल हमारी बातों में करेंगे तो कैसे ही होगा। हमने ये कहा था आपको कि जब आदमी चिट्ठी लिखता है दिल में प्रेम से, तो जो आप कलम चलाते हैं उसमें प्रेम का जो इंजेक्शन इनपुट करते हैं, आप समझ रहे हैं जरा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आज के जमाने में आप चिट्ठी से ही मंगाइए, चिट्ठी से मंगाने में तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। हमारा कहना यह था कि अगर आपका बच्चा आपके सामने खड़ा हो और एआई बन गया हो और वो सिर्फ ये कह रहा हो कि पापा को हम सिर्फ इतना ही पापा मानेंगे, अब आपके ऊपर क्या गुजरेगी? आप कहते कि बेटा मेरा कहना नहीं मानता। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि जो ह्यूमनिटी है, जो प्रेम है, जो करुणा है, जो मानवता है, जो संस्कार है, जो सभ्यता है, वो
एआई की, हम कृत्रिम की और नकली की बात कर रहे हैं, लेकिन नकली की उनसे पूछिए जिनके घुटने बदले गए हैं। जिस आदमी का घुटना खराब है, मुझे एक आदमी बता दीजिए कि वो नकली घुटना लगवाने के लिए तैयार है, नहीं लगवाएगा?
मन आप तय करके आए हैं कि एआई में ही झगड़ा करेंगे।
नकली घुटना लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, एक आदमी बता दीजिए कोई नकली घुटना लगवाने के लिए तैयार है कि नहीं है।
और सुनिए, इससे अध्यात्म पे कोई खतरा नहीं है।
जी
समझिए जरा, इसको बैठ जाइए आप।
जी जी,
हाँ माइक रख दीजिए। इससे जो है मुझे लगता है कि अध्यात्म पे खतरा नहीं है, खतरा हमारे और आपके अच्छे संस्कारों पे है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो आप पता नहीं दिल्ली से वहां से, अरे आज के जमाने में चिट्ठी की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ये कह रहे थे कि जब आप चिट्ठी लिखते हैं या आप अपने बच्चे को प्रेम से कहते हैं कि बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, चॉकलेट लाया हूं जरा ये काम कर दो, तो बड़े प्यार से उठ जाता है। जब आप मशीन की तरह से बात कीजिएगा तो मशीन ही समझेगा ना, तो मैं वो बात कर रहा हूं। तो एआई कोई रोकने की बात नहीं है, एआई को इस्तेमाल करने में जिस इनपुट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस पर बात हो रही है।
एआई का हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं,
क्योंकि एआई बनाने वाले भी हम ह्यूमन बीइंग ही हैं, तो हम अपने विवेक शक्ति के जरिए जो विचार जो उससे लेना चाहेंगे, जितना पॉजिटिव उनसे डिमांड करेंगे उतना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। तो निकुंज भाई, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि विवेक शक्ति से हम जब सोचते हैं, कार्य करते हैं, और एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें हेल्प करती है, उसमें जो गलतियां होती है वो ऑन एयर चली जाती है या पॉडकास्ट में चली जाती है, कहीं भी वो एक बार चला गया फिर उसको वापस लेने में भी मुश्किल है और वो गलत मैसेज जाता है। तो हमारी इंटेलेक्ट जो भगवान की देन है उससे ही हमने एआई को क्रिएट किया है, तो दोनों के बीच की ये जो कड़ी है उसके लिए आपके एक्सपीरियंस।
पिछले साल हमारे एक बहुत वरिष्ठ मित्र श्रीनिवासन जी, बहुत लोग पिछले साल आए थे, उन्होंने लाइव इधर करके दिखाया था कि भी इमेज बनाओ, उन्होंने एक ट्राई किया। अब बेचारे एक बार दो बार तीन बार चार बार उसको बोले कि भाई आई वॉन्ट टू मेक ए इमेज ऑफ ए पर्सन मेडिटेटिंग इन माउंट आबू, ये पांच बार छह बार इसने गलत ही बनाया। आखिर वो थक के बोला स्टॉप, इसको बंद कर दो। वो बनाए ही नहीं, को पायलट करके जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो दिखा रहे थे, बट ये बार बार बोले ठीक तरह से बने ही नहीं। फिर बोले बादल दिखाओ, ये करो वो करो, तो उसकी देखिए लिमिटेशन है, ये स्वीकार करने में कोई नुकसान नहीं है, लिमिटेशन है क्योंकि मैन मेड है। दूसरा, मैं खुद एक बार ट्राई किया कि भाई इसमें दम है कि नहीं, तो इनको मैंने एक लिखा कि माँ के ऊपर एक कविता लिख के दीजिए, तो लिख के दिया भाई माँ के ऊपर। मैंने उसको जवाब दिया मजा नहीं आया। अच्छा, उसने बोला सॉरी, वो कॉल सेंटर में क्षमा कीजिएगा। तो फिर से दूसरा, मैंने बोला मजा नहीं आया। तीसरा, चौथा, पांचवा, सात बार मैंने कहा मजा नहीं आया, तो क्षमा चाहता हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, तो इससे तो बेहतर होगा आप अपनी माँ के पास जाकर के उनकी गोद में सर रख करके माँ करके इतना बोले, माँ का वात्सल्य भरा हाथ आपके सिर पे घूमेगा, हमको तो ये पसंद है। तो ये लिमिटेशन है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हम कार्यक्रम के अंत में जा रहे, पर मुझे कोमल जी से एक प्रश्न पूछना है, परमिशन दियो तो।
जी,
ये नारसन जी ने अभी एक बात जो बोली कि बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, परंतु हकीकत ये है, हमारे पास आज भी मेरे साथ दो युवाओं ने पॉडकास्ट एक किया, हकीकत ये है कि आज के जो युवा है उन लोगों के अंदर माहिती की, इंफॉर्मेशन की जो भूख है, तो वो सोचना नहीं चाहते, तुरंत चाहिए, तो उसका क्या, वो भूख कैसे मिटेगी? वो एआई के जरिए ही फटाफट से सब फटाफट, टाइम नहीं है सोचने का हमारे पास, वो बोलते किसके पास टाइम है, तुम लोग के जैसे हमको मेडिटेशन करेंगे और सोचेंगे तो तुरंत अभी चाहिए।
भाई अभी चाहिए सूचना, इसीलिए तो माँ बाप घर में मर जाते हैं और लाश उनकी पड़ी रहती है, बेटा कह देता कि वहां अंतिम संस्कार कर दो, यही तो है इसका भूख का। जब व्यक्ति का विवेक काम करना बंद कर देगा, तो अब व्यक्ति क्या संवेदन शून्य हो जाएगा या संवेदना पूर्व रहेगा? मैं पहली बात ये कह रहा हूं, आजकल के जनरेशन किसकी है? हमारे घर के बच्चे हैं, आपके घर के बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार के हैं, परिवारों के, समाज में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं। आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं आपको तय करना है ना जी। ये क्या आप सुबह सुबह बच्चा 8 बजे तक सोता रहेगा और आप उसको कह दीजिए कि बेटा उठ जाओ, आधे घंटे में एआई से तुम सारे कंटेंट इकट्ठा कर लो। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे मम्मी पापा सुबह 4 बजे उठा देते थे कि इस समय सरस्वती का वास होता है, इस समय पढ़ोगे तो सरस्वती तुम्हारे जिह्वा पे विराजमान होगी, तुम्हारे याद हो जाएगा। तो जो इसका इस्तेमाल करना है, देखिए हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, सिर्फ एआई का मतलब ये नहीं है कि हम उसको समाज से हटा दें। हम लोग यहाँ पे लोग कहते हैं कि सन्यासी का मतलब अलग होता है, जैसे बाहर के सन्यासी का मतलब घर बार छोड़ के चले गए। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में एआई का सबसे बेहतरीन उपयोग अपने मेडिटेशन में होता है। हम लोग अगर एसी चलती है, कूलर इस्तेमाल करते हैं, फैन इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हर साइंस की आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने मेडिटेशन के थ्रू उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका दुरुपयोग हमारे ऊपर न हो। आप सुबह सुबह हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठते हैं, कौन सा एआई हमें उठाता है? लेकिन जो परमात्मा की एआई से जो हम अपने को इंड्यूस करते हैं, उसका इस्तेमाल एआई पे हम करते हैं, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता का भी डेवलपमेंट होता है, और जो एआई हम उपयोग करते हैं उसका हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि संसाधनों से भागना नहीं है, संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक की कार्यशैली और विवेक की जो क्षमता है, जो उसकी अपनी पावर है, उसको दुरुपयोग मत कीजिए, उसको खत्म मत कीजिए। ये व्यक्तिगत नुकसान है, ये हमारा आपका आपका बगल में होगा नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत नुकसान है कि हम अगर आपको पहाड़ा गिनना है तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, एआई का इस्तेमाल करें, फिर आपकी बुद्धि कहां से होगी? तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे, जो जनरेशन है, हमारे समाज के हैं, हमारे आपके परिवारों से हैं, और उन बच्चों से फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, आज समाज के सामने देखा जा सकता है। आज समाज के लिए हम लोग कहने लायक हैं कि हम समाज में हैं, बताइए। सोशल मीडिया का मतलब क्या है? सामाजिक मीडिया का मतलब क्या? एक अच्छे समाज बनाने का दायित्व। आज समाज में क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, रामायण महाभारत में ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं है, आज की घटनाओं में हो रहा है। किसकी देन है ये? एआई की देन है। किसकी देन है? आधुनिक चीजों की देन है। किसकी चीज है? हमारे गिरते संस्कारों की देन है। तो जिस दिन अगर आर्टिफिशियल चीजों के इस्तेमाल से हमारे संस्कारों की तिलांजलि हो जाएगी, उस दिन हम समाज में सामाजिक कहलाने लायक नहीं रहेंगे, और आज नहीं है। कौन कहता है जी कि ये एक हसमैन का काट के लाश ड्रम में गाड़ दो? किस रामायण महाभारत में देखा आपने? रामायण का तो युग सबसे ज्यादा था कि रावण इतना हिंसक था, लेकिन उसने तो सीता का भी बाइज्यत हरण किया था। आज देख रहे हैं घटना। इन आधुनिक चीजों का जब हम इस्तेमाल करेंगे और संवेदन शून्य होकर इस्तेमाल करेंगे, तो यह हमें इससे बेहतर है कि हम इसका इस्तेमाल न करें। कम से कम जितना रहेगा हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा समाज, एक कुटुंब के रूप में तो रहेगा। तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यह मान के चलें कि हमको अपनी संवेदना को बनाए रखना है, अपनी सभ्यता को बनाए रखना, अपने मूल्य को बनाए रखना है। मुझे लगता है कि इस पे बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो जिस बहाव में हम तेजी से बहते जा रहे हैं, आने वाले समय में तो हम इंसान के राक्षस भी कहलाने लायक नहीं होंगे, सॉरी टू से, क्योंकि जिस तरीके के हमारे समाज में कृत्य हो रहे हैं, किसकी देन है? किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप ही बता दीजिए, बताइए इसमें से किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? जब हमारे देश में टेलीविजन आया था तो लोग कहते थे कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर घर में एक जगह खाना खाएगा, एक साथ टेलीविजन देखेगा। जब टेलीविजन आया तो 10 घर थे, 10 परिवार में 10ों के कमरे में अलग अलग टेलीविजन हुए। जो लोग एक साथ खाना खाते थे वो खाने पे भी नहीं मिलते हैं, और उससे क्या हुआ? तो जो आधुनिक संसाधन है उसका हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति सभ्यता है, जो पारिवारिक मूल्य है, उसको अनदेखी मत करिए, फिर तो हम अपना ही विनाश अपने लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए जो राजयोगा मेडिटेशन है ब्रह्मा कुमारी जी का, ये इसके लिए बहुत बेहतरीन उपाय है कि आपके तीसरे नेत्र को खोले रखेगा, और आपको क्या करना है और नहीं करना है वो सब आपको समझाता रहेगा। और किसी का है तो सुनीता बहन जी से आप थोड़ा ज्ञान सुन लीजिए। नंदी में अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
हाँ, नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आपका परिचय?
हाँ, मेरा नाम शुभेंदु रॉय है, मैं दिल्ली से आया हूँ, दूरदर्शन से, डीडी न्यूज। तो मैं जिस संस्कार से पैदा हुआ हूँ, सनातनी, मतलब भारत का मिट्टी में, तो इसमें हम लोग को स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड इंडिफिनाइट टॉलरेंस। तो ये तो हम लोग मान लेते हैं, हाँ आप कोई भी टेक्नोलॉजी लाओ हम लोग इंडिफिनेटली यूनिवर्सली एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिटरली मीनिंग ही बोल रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृत्रिम कैसे हो जाएगा? और जो बायोलॉजिकली हम लोग प्रोडक्ट हुए, कहीं से भी आए, तो यहां से 5 दिन से तो वही बताया जा रहा है हम लोग कहां से आए हुए हम आए, तो इसी का खोज में हम लोग लगे हुए हैं, फिर उसका बीच में फिर AI। अब मैं तो कैसे भी हो करके मैं उसको स्वीकार करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार नहीं हूं। और ठीक है, क्विकनेस जरूरी है, मशीनरी जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर मुझे लगता है कि लेट इट डू बाय एनी ह्यूमन बींग जिसका ह्यूमैनिटी रहे। या तो मुझे लगता नहीं कि उसमें ह्यूमैनिटी ग्रो कर पाएंगे। मेरा बच्चा मेरा घर में मोरल डेवलप करता है, वो आकर के समाज का सेवा करता है, लेकिन न्याय में तो मोरल कैसे डेवलप हो जाएगा? मेरा यही सिद्धांत मतलब सुझाव था। अब बाकी आप लोग ज्यादा
तो स्वीकार नहीं कर रहे, तो क्या स्वीकार कर रहे हैं बता दीजिए।
हाँ, मैं बता दे रहा हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि 2 तरह का है, एक डीप लर्निंग, एक मशीन लर्निंग। तो डीप लर्निंग में तो आपको फिर तंत्र के बारे में जानना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी नहीं जान करके अगर आप, जैसे हम पायलट नहीं है, अब मुझे मेरा दिल हुआ कि मैं फ्लाइट उड़ाऊं,
मेरे से गलत हो जाएगा, तो हैंडल करना है थोड़ा सोच समझ करके, सब फील्ड में नहीं लाना है।
ठीक, थैंक यू।
विवेक शक्ति से हमें एआई का यूज करना है, कहाँ कितना कितने परसेंटेज में हम उससे ले, बाकी हम अपनी विवेक शक्ति का भी उपयोग करें। सुनीता बहन, अभी सुनीता बहन हमारे बीच में है, ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता बहन, आप हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है उसके आप फोकल पॉइंट पर्सन हैं, मीडिया से भी आप जुड़े हुए हैं और आपका बहुत सुंदर अनुभव है इन विषय में, जो हमें राज्यों के द्वारा इस चीज को कैसे मदद रूप बन सकते हैं, तो सुनीता बहन हमें राज्यों के अभ्यास से गाइड करेंगे। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी जी।
थैंक यू नंदिनी बहन। ओम शांति, ओम शांति। सभी एक बार प्यार से दिल से मुस्कुराते हुए बोलिए ओम शांति। मंचासीन हमारे सभी मीडिया जगत के अनुभवी रतन और सभा में उपस्थित आप सभी मीडिया जगत के सफलता के सितारे, आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है उसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है, सबसे बेस्ट मीडिया कौन है? सबसे बेस्ट मीडिया कौन है? कौन है, कौन है, कौन है? गर्व से कहिए, खुशी से कहिए, कौन है? हम हैं, है ना, हम हैं। हम अर्थात कौन, जो बाहर है या जो अंदर है? क्या कहेंगे, बाहर आर्टिफिशियल है, अंदर ओरिजिनल है। बाहर खतरा है, अंदर सुरक्षा है। बाहर अशांति है, परिस्थिति है, अंदर शांति है, स्वस्थिति है। एक कहानी याद आती है एक राजा की, और उस राजा को बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, तो उसने सोचा कि चलो गांव में एक बहुत अच्छे गुरुजी रहते हैं, उनके पास मैं चला जाता हूँ समस्या का समाधान करने। और जब वो गुरुजी के पास गए तो उस समय पर बहुत तेज तूफान हुआ, आंधी तूफान, और उस गुरुजी जिस कुटिया में रह रहे थे छत से भी पानी निकल रहा था। तो उसने कहा कि गुरुजी सभी भाग रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, आपके यहाँ पे भी पानी निकल रहा है, तो आप और हम दोनों भी यहाँ से भागते हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद राजा जी तो भाग गए थे, बोले मैं तो अपनी सुरक्षा करने चला जाता हूँ। और दूसरे दिन सवेरे जब सब कुछ शांत हो गया तो उनको आया कि गुरु जी का क्या हाल हुआ होगा, वो भागे या नहीं भागे, जरा मैं जाकर देख लेता हूँ। और जैसे ही वो गए वहां पे तो देखे तो वहीं वैसे के वैसे ही बैठे हैं। तो बोला गुरु जी आप भागे नहीं? कहा, गुरु जी ने कहा कि भागे आप भी और भागा मैं भी, आप बाहर भागे मैं अंदर भागा। तो इसलिए मेडिटेशन क्या है कि अंदर जो ओरिजिनलिटी है उस ओरिजिनलिटी से हम जुड़े रहें, उस ओरिजिनलिटी का स्वरूप हम बने, और वो ओरिजिनलिटी वो चैतन्य शक्ति आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। तो इस आत्मा के मन बुद्धि संस्कार की अनुभूति करना ये है राजयोग, जिससे हम मन बुद्धि संस्कार पर विजय प्राप्त करते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें बताया गया कि आने जो फ्यूचर आना है उस फ्यूचर में अभी तक तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर पे कमांड दे रहे हैं और एआई काम कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा आपको बैठे बैठे से संकल्प करना है। आपने संकल्प किया और रोबोट ने काम किया, यहां तक कि बीमारियां भी आपको सिर्फ संकल्प करना है कि वो बीमारी जो है वो खत्म हो गई है, वो सेल्स सारे अच्छे हैं, मान लो कैंसर के सेल्स है वो सारे टॉक्सिन्स निकल गए हैं, और वही चीज वो रोबोट कर देगा। अर्थात सबसे पावरफुल मीडिया है संकल्प। हम हमारे संकल्प, हम क्या सोचते हैं उसमें भी परमात्मा में बताते हैं। दो बातें हैं, एक है सोचता स्वरूप रहना, एक है स्मृति स्वरूप रहना। एक है कि हम सिर्फ सोचते जाएं और एक है कि हम अनुभवी बने, स्मृति स्वरूप करें। तो अब जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं, उस मेडिटेशन में हम अपनी ओरिजिनलिटी का सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं, लेकिन उसकी स्मृति में रहकर उसका अनुभव करेंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आंखें खोल करके बैठे, क्योंकि ये आंखें खिड़कियां हैं मन बुद्धि की। जो हम यहाँ सोचते हैं वो भावनाएं इन आंखों से बाहर जा रही है यूनिवर्स को। और दूसरी बात, हम ये जो योग हम कर रहे हैं वो कर्म योग है, कर्म करते हुए हमें करना है और कर्म हम आंखें खोल के करते हैं। तो इसीलिए हम सीधे बैठेंगे, पीठ सीधी करेंगे, आंखें खुली रखेंगे और अपने बुद्धि का, बुद्धि रूपी नेत्र का प्रयोग करेंगे। जो बात चलती आ रही है विवेक बुद्धि, बुद्धि ये बुद्धि क्या है, एक चक्षु का भी काम करती है। तो आप जहां से भी आए हैं, जिस शहर से आप लोग आए हैं, उस शहर में जहां आप रहते हैं, जिस गली में आपका मकान है, उस मकान के दरवाजे को आप खोलिए। अंदर आपका बेडरूम कहां पर है, आपका किचन कहां पर है, आपका टीवी सेट कहां रखा है, बहनों आपका गहनों का सेट कहां है, डाइनिंग सेट कहां है, माइंड आपका सेट हो गया, सब कुछ आपको आपके सामने आ गया। ये किसने देखा? इन आंखों ने नहीं देखा, बुद्धि रूपी नेत्र ने देखा। तो ऐसे ही बुद्धि रूपी नेत्र से हम सभी अभी भ्रकुटी में बीच, भ्रकुटी के बीच बैठे विराजमान, अपने आप को देखें, स्वयं को देखें, सबसे बेस्ट मीडिया पर्सन को देखें, अपने आप को, जो बहुत ही छोटा सूक्ष्म एक दिव्य सितारा है। आंखें खुली है और प्यार से मुस्कुराते हुए खुशी से हम अपने भ्रकुटी के बीच में अपने आप को निहार रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, एक शक्तिशाली सितारा, आत्मा चेतन सितारा, इन पांच तत्व का बना हुआ जो ये शरीर रूपी पुतला है, उसका मैं मालिक हूं। बाहर जो है वो रचना है मेरी, मैं उसकी उसका रचयिता हूं। मैं मन बुद्धि संस्कार सहित एक चेतन शक्ति, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्यार से देखिए अपने आप को, निहारिए, ये समय है अभी। महसूस कीजिए कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं, वो कुर्सी अलग है और आप अलग हैं, ऐसे ही ये शरीर विनाशी, एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस वाला है, लेकिन इससे परे मैं आत्मा, एक अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस वाली चेतन शक्ति हूं। डिटैच हो जाइए इस लिमिटेड कॉन्शियसनेस से, जैसे एक पिंजरे से पंछी उड़कर ऊपर जाता है, खुशी खुशी से उमंगों के पंखों से हम भी इस लिमिटेड कॉन्शियसनेस शरीर से डिटैच होकर उड़कर जाएं इस आसमान से भी ऊपर, एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है। देखिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र से कितना सुंदर वो दृश्य है, जैसे लाल कारपेट पर आप हीरे लगा दो, कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में हम सभी हीरे की तरह चमकते हुए सितारे हैं। और ध्यान से देखिए, ऊपर एक बेदाग हीरा है, बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान। उस बेदाग हीरा, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, जो सर्व की कल्याणकारी, इसीलिए उनका नाम शिव है, वो और कोई नहीं, लेकिन मुझ आत्मा का मेरा अपना पिता है उनके सानिध्य में अपने आप को उनकी शक्तियों से भरते हुए देखें, उनके गुणों से भरते हुए देखें। वो एक शिव परमात्मा ही है जो अनलिमिटेड है, बेहद गुणों के सागर, बेहद शक्तियों के सागर हैं। उनकी स्मृति मात्र से ही उनकी समर्थी हमारे अंदर आ जाती है, उनकी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है। दिल से हम उनका शुक्रिया करें और दृढ़ संकल्प करें कि हम शिव परमात्मा को हर पल, हर श्वास, हर घड़ी अपने बुद्धि के द्वारा उनको अपने पास रखेंगे, अपना बुद्धि योग उनसे जोड़कर उनके गुण और शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हुए उसी का प्रयोग करेंगे। आ जाएं फिर से हम अपने भ्रकुटी के बीच में, और जब इन आंखों से हम बाहर देखते हैं तो सामने भी देखें कि इस लिमिटेड कॉन्शियसनेस के अंदर, इस आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर हम सभी प्रकृति के बीच में चमकते हुए आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं। वो बागवान परमात्मा जिनके हर आत्माएं एक चैतन्य पुष्प की तरह हैं, एक रूहे गुलाब की तरह हैं। हरेक को उनके ओरिजिनल स्वभाव संस्कार में देखें कि सभी परमात्मा की संतान शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्माएं मेरे अपने हैं, एक परिवार की भावना ले आए, सबके लिए प्रेम की शुभ भावनाएं अपने अंदर ले आए। बाहर दुनिया में बहुत परिस्थितियां हैं, लेकिन उस परिस्थिति के पीछे, उस अकल्याण के पीछे क्या कल्याण है उसको देखें। और वही संदेश देने का लक्ष्य रखें। व्यवस्थाएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन आंतरिक अवस्था मेरी शांत चित प्रेम स्वरूप हो। और यही संदेश हम जब बाहर देंगे तो लोगों की भी अवस्थाओं को बनाने में हम समर्थ रहेंगे। इस प्रकार से हम दुआएं दें और दुआएं लें। और एक बेस्ट मीडिया पर्सन बनकर शिव परमात्मा का नाम रोशन करते हुए इस धरा पर एक दैवी संसार लेकर आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और ये मेडिटेशन हम सिर्फ अभी हमने अभी किया, यहाँ तक सीमित न रहे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी हर घंटे में एक बार पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त, और खास करके रात को सोने के वक्त तो जरूर से करें, क्योंकि रात का जो अंतिम संकल्प होता है वही सुबह का पहला संकल्प होता है। तो इसलिए ये अवश्य करें। और इसको सार में मैं आपको बता दूं, लुक इन करें कि मैं कौन हूँ, लुक अप करें उस परमात्मा का शुक्रिया करें, और जब लुक आउट करें तो मुझे क्या संदेश देना है, वो संदेश जिससे खुद का और सर्व का कल्याण हो, वो स्मृति में रखें। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी का, हमें अंतर जगत की यात्रा कराई। और मैं समझती हूँ कि इस यात्रा से हम सभी एम्पावरमेंट को अनुभव किया होगा। आज के इस हमारे डायलॉग सत्र को यहाँ हम पूर्ण करते हैं। तो उसे डायलॉग सत्र को पूर्ण करने से पहले मैं भ्राता निकुंज भाई जी से अनुरोध करती हूँ हमारे मंचस्थ महानुभावों को हमारी ईश्वरीय प्रणाली के मुजब उनको ईश्वरीय सौगात देंगे, टोली और सम्मानित करेंगे। कोमल भाई और निकुंज भाई हमारे मेहमानों को ईश्वरीय सौगात दे करके उनको अभिवादन करेंगे। आज के हमारे इस डायलॉग से हम सब इतना एक संकल्प ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम अपनी विवेक से, अपनी समझ से कहाँ, कितना, किस प्रकार से करना है उस हिसाब से करेंगे। तो AI हमारा फ्रेंड बनकर हमें मदद भी कर सकता है, लेकिन उसका उपयोग करने की चाबी हम अपने हाथ में रखें, संपूर्णतः हम AI के ऊपर डिपेंड न रहे, क्योंकि अनेक रास्ते उनसे खुलते जाते हैं। तो आज के सेशन के हमारे सभी स्पीकर्स, हमारे कबीर भाई जरीवाला, सुरेश भाई वर्मा, डॉक्टर सुनीता बहन, कोमल भाई, निकुंज भाई जी और सोमनाथ भाई जी का, मैं सबका मीडिया विंग की ओर से, संस्था की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, आप सभी ने बहुत अमूल्य विचार हम सभी के साथ साझा किए और हम सभी यही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे।